أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجیے گا محمد انتہائی لطف کرم انتہائی احسان اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ان کی ہدایت ان کی رہنمائی نصیب فرمائی مجلس کی سارے ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے ابتدائی مجلس میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ خدایا جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما پروردگار انہیں شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما ان کے قبور کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما ان کی نصرت اور نصرت کرام شہادت نصیب فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم خاص اس کے ساتھ ہی جو ایام ہیں وہ جنت البقیع کی انہدام کی تاریخ ہے اور اس سے متصل ہے ایک بار پھر ان مزارات مقدسہ کی تعمیر کے لیے اور جن ظالموں نے ظلم کیا ان کی بربادی کے لیے درود بھیجے محمد پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائی دین مبین کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا طریقہ کار نصیب فرمایا یہ دیکھتے ہوئے کہ سب جو بھی ہم لوگ ہیں اور جو بھی اسلامی معاشرہ موجود ہیں وہ دین کے بنیادی احکام کو جانتا ہے اور دین کا شاید ہی کوئی بنیادی حکم ایسا ہو جس سے لوگ غافل ہوئے یعنی نہ جانتے اس معنی جانتے سب ہیں تو ہم سب کے سامنے تقریباً ایک معاملہ ہے وہ دین کے معاملے میں یہ ہے کہ مشکل نہ جاننا نہیں ہے مشکل نہ کرنا ہے جانتے سب ہیں اب آپ تصور فرمائیے جو بچہ پاکستان میں رہا ہے چاہے وہ کسی بھی مکتب میں فکر کر رہا ہو جو بچہ بھی پاکستان میں رہا ہے کیا اس نے نہیں پڑھا کہ مثلا دین میں واجبات کیا سب بنیادی بات ہیں اچھا دین کے بنیادی واجبات کے علاوہ مثال کے طور پر انسانی اقدار اخلاقی اقدار کیا یہ ایسا ہے کہ انسانوں کو پتہ نہیں چل سکی بہرے کی معلوم اس کے علاوہ خود انسان کے نفس کے اندر جو خدا مطالع فرماتا ہے فالحمہا فجورہا وتقواہا یہ سب بھی بازیں ہیں تو تین طرف سے انسان جو آج کی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے उसको कहीं ना कहीं से रहनुमाई हासिल हो रही है। अब मुश्किल ये है कि रहनुमाई तो सारी है, वो ज़माना भी गुजर गया जब कोई ये कहे कि मेरी ज़बान फना है, इस ज़बान में दीन नहीं मिल रहा, ये मसला भी ख़त्म हो गया। अब एक तो ज़बानों का बैरियर ख़त्म हो गया, दूसरा मसला ये है कि जिस ज़बान के भी हम और आप बोलने वाले हों, उस ज़बान के अंदर, उस बोली के अंदर भी दीन वाफ़ मकदार में मौजूद है। तो अब जो ख़ास ज़माना है, इस ज़माने में और इंटरनेट की इंफॉर्मेशन के होते हुए, रवाबित के ज़्यादा होते हुए, अब मुश्किल जानना ना जानना नहीं है। अब जो असली मुश्किल हमारे सामने आती है वो करना और ना करना, इस मुश्किल को कोई कैसे हल करे। अच्छा, अब जब मुश्किल जानना और ना जानना थी तो मज़ीद प्रोग्राम करवा लो, मज़ीद दर्स रखवा लो, मज़ीद मजलिस करवा लो, ये मुश्किल का हल था। भाई एक इलाके में मजलिस नहीं होती, आप जिस इलाके में मजलिस करवा लें, जो नहीं जानते थे वो जान जाएंगे। एक आदमी नहीं जानता था, उस तक आपने किताबचा पहुंचा दिया, उस तक आपने कोई मजलिस पहुंचा दी, कोई तकरीर पहुंचा दी, जो नहीं जानता था वो जान गया। पहले ज़माने में मुश्किल ये थी कि लोग जानते नहीं थे, नहीं जानते थे, प्रोग्राम करवाओ, सुनवा दो, मिलवा दो, किताब दे दो, कॉपी दे दो, सब ये हल थे। एक अरसे तक हम लोग ये समझते रहे कि हमारी मुश्किल ना जानना है, अगर जान जाएंगे तो मुश्किल हल हो जाएगी। अब मेरा अपने ख्याल है कि अब कराची जैसे शहर में रहते हुए जहां हर साल लाखों मजलिसें होती हैं, अब मैं आपकी खिदमत में का वक्त नहीं लूँगा कि मैं इस बात को चंद मिनट में अर्ज कर सकता हूँ कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि लाखों होती हैं, आया मुबालगा है या हकीकत। हकीकत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5-6 लाख मजलिसें कराची में होना कोई मुश्किल काम है। जिस शहर में 5-6 लाख मजलिसें होती हों, क्या वहां मुश्किल ना जानना है? और इसका एक बहुत सादा सा तरीकाकार यह है कि मैं और आप सिर्फ उस दीनी मालूमात को अपने जहन में दोहरा लें, मकदार को, जो हमने बचपन से अब तक सुनी होगी, और उसका थोड़ा सा मुकायसा कर लें उस अमल से जो बचपन से अब तक हमने किया होगा, और अपने आप से एक सवाल पूछ लें कि वो जो मालूमात हमें मिली और वो जो अमल हमने किया, इसका प्रोपोर्शन क्या है। तो हम फौरन समझ जाएंगे कि हमारी मुश्किल मजीद जानना नहीं है, हमारी मुश्किल ये है कि जो जानते हैं उस पर अमल कैसे हो, हमारी मुश्किल यहाँ पर। और एक दो मिसालें बहुत सादा सी, मसलन क्या कोई नहीं जानता कि मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है? कौन नहीं जानता? अगर दीनी अकीदे के अंदर रहते हुए बात करें तो ये तो असूल दीन में से है। कोई दुनिया का दीन ऐसा नहीं है जिसने हयात बाद अज़ मौत को असूल दीन काउंट ना किया हो, कोई दीन ऐसा हो ही नहीं सकता। दीन के कंपोनेंट्स में से, मेन अज्जा में से एक जुज होता है खालिक को कबूल करना, एक जुज होता है हयात बाद अज़ मर्ग, मौत के बाद जिंदगी को कबूल कर लेना, चाहे कोई भी दीन हो। और दीन होगा तो तीसरा जुज उसका होगा नबूवत को कबूल करना, कि खुदा ने कोई ना कोई पैगाम भेजा होगा। हर दीन के अंदर ये तीन बुनियादी अज्जा होते हैं, तो हर दीन मानता है। तो मुसलमान मानेगा, बिल्कुल मानेगा, उसूल दीन में से। जब वो ये मानता है, उस मानने का हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर असर कितना है, यहाँ सारी मुश्किल है। कभी जानना मुश्किल नहीं है, हत्ता मानना भी मुश्किल नहीं है, अगर ज़बान से मानने की बात हो तो मानना भी मुश्किल नहीं है। कोई सड़कों में मिलेगा जो क़यामत का मुनकर नहीं? कोई? सिर्फ मुश्किल क्या है, जो मानते हैं या तो उसकी तफसीलात नहीं जानते, यह जो कुछ मानते हैं उस पर यकीन की कमी, यकीन नहीं आया। तो चंद मिनट्स आपके सिर्फ लेते हुए इस मामले के ऊपर 2-4 जुमले महावरतन अर्ज कर दूं कि हम जिस हयात बाद अज़ मर्ग का इंतज़ार कर रहे हैं उसको किस तरह देख रहे हैं। खुलासे के तौर पर चंद जुमलात में दुरूद भेजिएगा मोहम्मद अलैहि। तो दो दुनियाओं का तसव्वुर एक ज़माने में सिर्फ दीन के अंदर था, एक ज़माने में सिर्फ दीन था कि जो दुनियाओं का तसव्वुर देता था, ये दुनिया और वो दुनिया, दो दुनिया का तसव्वुर। अच्छा, जो दीन में नहीं थे, जो मिसाल के तौर पर बे इस्तिलाह साइंटिस्ट थे, वो दो दुनिया नहीं मानते थे। वो कहते थे ये दुनिया और बस यही दुनिया, इसके बाद कुछ नहीं। तो दुनिया के बारे में दीनदार जो थे वो दो दुनियाओं को मानते थे, ये दुनिया और वो दुनिया। यानी अगर मैं आखरत का तर्जुमा करूँ तो आखरत का मतलब दी लास्ट वन नहीं बनेगा, आखरत का तर्जुमा बनता है दी अदर वन, वो दुनिया। और उस दुनिया में क्या खूबी है? उस दुनिया में खूबी ये है कि वो आगे नहीं है बल्कि वो वापसी की दुनिया है। एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है हम लोग के जहन में, हम ये समझ रहे हैं कि वो आगे की दुनिया है, आगे की दुनिया नहीं है, वो वापसी की दुनिया है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, जायून नहीं है, उधर जाने वाले नहीं है, उधर वापस आने वाले हैं। तो वो जो दुनिया है वो आगे नहीं है, एक्चुअली पीछे की है, जिसकी तरफ वापस जाना है हम लोगों को। लेकिन हमें यूँ लगता है जैसे सफ़र आगे का है, आगे का नहीं है, पीछे का। इसमें खूबसूरती क्या है? इसमें खूबसूरती ये है कि अगर आगे का होता तो वो हमारे अलावा कुछ और होता, और अगर पीछे का है तो वो हमारा असल और असास है, हमारा ओरिजिन वो है। हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम अपने वतन पे वापस जाएंगे, वतन पे। इस खातिर उस दुनिया में सुकून है, इंसान को वतन में सुकून नसीब होता है और गुरबत में तंगी होती है। काश हम लोग ये समझते कि ये गुरबत है वो वतन है। इंसान गुरबत के लिए बेताब नहीं होता, वतन के लिए बेताब होता है। अगर कोई शख्स वाकई आखरत को पहचान ले तो मौत के लिए बेताबी दिखाएगा। ये वो खासा अहले बैत था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे पास एक ज़माना था जब ये दुनिया और वो दुनिया, और उस दुनिया को दूसरे नहीं मानते थे साइंटिस्ट। वो कहते थे दुनिया सिर्फ यही दुनिया, और जो दीनदार थे वो कहते थे ये दुनिया है और एक और दुनिया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि 60 की दहाई में साइंस में, स्पेशली फिज़िक्स के अंदर और पर्टिकुलरली थ्योरेटिकल फिज़िक्स के अंदर डेवलपमेंट हुई, और थ्योरेटिकल फिज़िक्स में जो डेवलपमेंट हुई तो उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि न सिर्फ ये दुनिया है और वो दुनिया है बल्कि बाद में भी नहीं है, साथ साथ है। तो एक नई टर्म उस वक्त बनी और उसका नाम था पैरेलल वर्ल्ड्स, पैरेलल वर्ल्ड्स। और स्पेशली आप जानते हैं आइंस्टाइन ने किस तरीके से इस बात को साबित किया कि पैरेलल वर्ल्ड्स एक्चुअली एक फिनोमिना, और ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया नहीं है बल्कि इस दुनिया के साथ एक और दुनिया है। अच्छा, ये साथ का मतलब ये नहीं है कि प्लैनेट्स के अंदर एक और दुनिया बसी हुई है, उसकी बात नहीं हो रही है। हमारी ही दुनिया अपने साथ बहुत सारी दुनियाओं को लेकर चल रही है, यही वाली दुनिया। अगर किसी और प्लैनेट के ऊपर हुआ तो गुफ्तगु कुछ और है। यही जो मैं और आप रह रहे हैं इसके साथ पैरेलल वर्ल्ड्स चल रही है, उसमें कौन रह रहा है? उसमें भी हम ही रह रहे हैं, उसमें भी हम ही रह रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत डेवलपमेंट थी जो 60s में हुई। और अभी जो आपने यकीनन सुना होगा, चंद महीने पहले बहुत बड़े थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट का इंतकाल हुआ, स्टीफन हॉकिंग का। उसने एक आखिरी जो आर्टिकल लिखा, उस आखिरी आर्टिकल के अंदर इस पैरेलल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को साबित किया। और उसने एक और बात लिखी, उसने लिखा कि ये जो हमारी दुनिया है इसके साथ बहुत सारी दुनिया हो सकती हैं। कब से हो सकती हैं? जब से हमारी बनी है। अच्छा, फिजिक्स में हमारी दुनिया कब से बनी है? बिग बैंग से, उस वक्त से हो सकती हैं। अच्छा, अभी हमारे साथ हैं, बिल्कुल हमारे साथ हैं, नंबर कितना है? इनफाइनाइट। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है न सिर्फ ये कि हमारी दुनिया है और हमारे साथ कुछ दुनिया है, बल्कि नाकाबिले शुमारिश दुनियाएँ मौजूद हैं, नाकाबिले एहसास, जिसको हम लोग कुरान करीम फरमाते हैं ला तुहसूहा, अगर तुम हमारी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं पाओगे। तो फरमाया कि तुम हमारी नेमतों को गिन नहीं सकोगे, और वो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इस दुनिया के साथ पैरेलल बहुत सारी दुनियाएं चल रही हैं। अच्छा, अब हम लोगों का काम दीनदारों का बहुत आसान हो गया, और वो कब आसान होगा, जब हमारे दीन में गहराई होगी। जो दुनिया में साइंस की तरक्की है वो हमें एक बहुत बड़ा फायदा देती है, और वो फायदा जो हमें देती है वो दीन के अंदर गहराई को कबूल करना है, गहराई को समझना है। मैं इस मामले में कि पैरेलल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट कैसे हमें गहराई दे रहा है थोड़ा सा इशारा करूंगा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद सब हमारे पास भी पैरेलल वर्ल्ड्स हैं। वैसे तो जो मुसलमान एक आम अकीदा रखता है वो ऐसे रखता है, वो कहता है कि एक हमारी दुनिया है मादी दुनिया, मैं जब मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, बरज़ख, जब बरज़ख ख़त्म होगी तो कहाँ जाऊंगा, महशर, और आखरत का लफ्ज़ जो हम लोगों के जहन में शुरू होता है वो वहाँ से शुरू होता है। हम लोग जब कहते हैं क़यामत और आखरत तो हमारे जहन में ये होता है कि भाई बाद या क़यामत या आखरत ज़ाहिर बरज़ख के एंड पर है, बरज़ख जब तक है क़यामत नहीं है, बरज़ख के इख्तिताम पर क़यामत है। तो हमारे जहन में ये तीन स्टेजेस बन जाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये कि तीन स्टेजेस एक के बाद एक हैं या एक साथ सब कुछ है। अच्छा, ये तीन तो हमने आसानी के लिए बनाए कि भाई एक हो गए हमारी दुनिया की ज़िंदगी, एक हो गया बरज़ख और एक हो गया महशर। अच्छा, महशर के बाद क्या है, महशर के बाद एक और ज़माना है जिसको हम पुलिस सरात कहते हैं। पुलिस सरात के बाद क्या है, पुलिस सरात के बाद जन्नत और जहन्नम। आए जन्नत और जहन्नम एक दर्जा है या इसके भी दर्जे हैं, बेपनाह दर्जे, दर्जा पे दर्जा। क्यों, बहुत सादा सी बात है, आया हजरत हुर की जन्नत वही है जो मेरे जैसे सौदागर की जन्नत नहीं, आया हजरत हुर की जन्नत वही है जो सलमान फारसी की जन्नत नहीं, तो दर्जा तो हो गए ना, तो दर्जात पे दर्जात हैं। अब सवाल ये है, ये सारी दुनियाएं एक के बाद एक हैं या सारी दुनियाएं साथ साथ हैं। अब आप मुमकिन ही कहें कि भाई ये कैसे हो सकता है कि साथ साथ हों, बिल्कुल हो सकता है। मसलन अब कुछ शवाहिद आपकी खिदमत में अर्ज करूँ जल्दी से, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद शायद तशय्यो की, शियत की और अहले बैत अथा की तालीमात की अहम तरीन खूबियों में से एक खूबी बरज़ख का बयान। अहले तसन्नुम के यहाँ बरज़ख का बयान ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर, और तशय्यो के पास ज़ाहिर है कि मौला के लुत्फ़ करम से बरज़ख का बयान बहुत कवी है। अच्छा, जो बरज़ख का बयान हमारे पास कवी है उसमें बरज़ख के हालात बहुत ज़्यादा हैं। मसलन बरज़ख के क्या हालात हैं, बरज़ख के हालतों में से एक हालत है वो ये कि जो बरज़ख में लोग उठाए जाएंगे वो किन शक्लों में उठाए जाएंगे, ये बयान बहुत तफसील से हमारे पास मौजूद है। और इसको समझ लीजिए कि रिवायात में एक चैप्टर है हमारे पास, और वो चैप्टर है तजस्सुम आमाल, आमाल का सूरत इख्तियार कर लेना, मुजस्सम सूरत इख्तियार कर लेना, सही, ये हमारे पास चैप्टर है पूरा। अच्छा, ये जो तजस्सुम आमाल है, आमाल का मुजस्सम सूरत इख्तियार कर लेना, ये बरज़ख में भी है, महशर में भी है, आखरत में भी है। मसलन आपने मशहूर मारूफ रिवायत यकीनन सुनी होगी ज़िंदगी में कई दफ़ा कि महशर में खुदा मुतकब्बिरीन को चूटियों की सूरत में खल्क करेगा, कि सारे खलाइक इन चूंटियों को रोंदते चले जाएंगे। अच्छा, ये जो चूंटियों की सूरत में खल्क होना है ये तजस्सुम अमल नहीं है, अमल था गुरूर और तकब्बुर, और उसने एक सूरत इख्तियार कर ली जो चूंटियों की सूरत थी, और ये किस फेज में हुआ, ये फेज था महशर का। अच्छा, महशर में इसका मतलब ये है कि तजस्सुम अमल है। अच्छा, आखरत में है या नहीं है? बिल्कुल है आखरत में। वो कैसे? मसलन हमारे पास मौजूद है कि जन्नत में इंसान के साथ उसके अमाल भी ज़िंदगी गुजारेंगे, अमाल भी ज़िंदगी गुजारेंगे। मसलन वो किसी दिन एक दिन देखेगा कि बड़ी अजीब व गरीब कोई नेमत उसे मिली है, और वो पूछेगा कि भाई ये नेमत जो मुझे मिली है ये क्या है? कहा जाएगा कि तुमने फना दिन एक कार्य खैर अंजाम दिया था, ये जन्नत में आज वो तुम्हें रिस्क में मिलना है। सही, ये तजस्सुम अमल है। अच्छा, ये तजस्सुम अमल बरज़ख में भी है? हाँ बिल्कुल है। बरज़ख में तजस्सुम अमल की सूरत क्या है? खुद इंसान युरफ़ुल मुजरिमूना बिसीमाहुम। कुरान करीम इरशाद फरमाता है महशर के बारे में कि मुजरिमों को उनके चेहरों से पहचान लिया जाएगा। अच्छा भाई, चेहरों से कैसे पहचाना जाए? उसकी वजह यह है कि इंसानों के आमाल उनके वजूद को तब्दील कर देंगे, वजूद को तब्दील कर देंगे। तो मिसाल के तौर पर आपके पास रिवायात के अंदर मौजूद है कि इंसानों को उन्हीं शक्लों में उठाया जाएगा जिन आदतों पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी। मसलन नाउज़ बिल्लाह ताला, अगर किसी को मक्कारी की आदत थी तो मक्कारी से रेलिवेंट जो जानवर है यानी लोमड़ी, उस सूरत में उसे उठाया जाए। ये रिवायात तफसील से तजस्सुम अमल को बयान कर रही है। अच्छा, ये जो तजस्सुम अमल है ये बरज़ख का है? बिल्कुल बरज़ख का है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, फिर रिवायत का सहारा लेते हैं। अरे, आपने वो रिवायत यकीनन सुनी होगी बचपन से, मुझे कि मौला मैदान आरफे में या मैदान मिना के अंदर तशरीफ़ फरमा, और किसी ने कहा कि मा अक्सरुल हजीज, इस साल हज करने वाले कितने ज़्यादा। इमाम ने फरमाया कि मा अक्सरुल जजीज व अक्लुल हजीज, रोने और चिल्लाने वाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हज करने वाले बहुत कम। रावी कहता है कि मैं समझ नहीं पाया, और इमाम ने मेरे सामने अपनी उंगलियों के अंदर रखते हुए मंजर दिखाया, और कह रहे मैंने मंजर देखा कि मैदान जो है वो जानवरों से भरा हुआ है, उनमें कुछ इंसान भी हैं, और ये जानवर एक दूसरे से भाग नहीं रहे, सब साथ हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये जो इमाम ने दिखाया ये इमाम ने बनाया या दिखाया है? बनाया का मतलब ये है कि वहां ये नहीं था और इमाम ने बना दिया, या दिखाया का मतलब ये है कि ये पहले भी था, इमाम ने इसकी आंखों को ये ताकत दी के देख ली। आप क्या बोलेंगे, बनाया या दिखाया? तो हमें समझ में आता है दिखाया, दिखा दिया इमाम कि भाई ये आलम है। सही है। अब मैं एक बात पूछूंगा, ये जो आलम था ये दुनिया में होना था या बरज़ख में होना था? ये तो बरज़ख का था, तो दुनिया में कैसे दिखाया? भाई ये तो बरज़ख में होना था, अभी तो बरज़ख शुरू नहीं हुई, बरज़ख मौत के बाद शुरू होती है, तो यहां कैसे दिखा दिया? यहां कैसे दिखाया? सिर्फ एक मतलब, पैरेलल वर्ल्ड्स, सब साथ साथ, सब साथ साथ। अजान मोहतरम, हम लोग मुसलसल इन दुनियाओं के साथ साथ चल रहे हैं। अब अगर कोई इंसान इसके ऊपर मेहनत कर ले कि भाई मैं दुनिया के अंदर प्यास लगती है पानी पीता हूं, पानी का एक असर है, जो पानी का असर इस दुनिया में है वो बरज़ख में किस चीज का असर है? पानी का तो नहीं है, क्यों? मादा है ही नहीं, मादा और मादियात नहीं है। क्या मैं नहीं हूं? नहीं, मैं तो हूं। तो जो मैं इस दुनिया में पानी से असर लेता हूं वो उस दुनिया में किस चीज से लेता हूं? अब आप तसव्वुर फरमाइए, तो मैंने पॉजिटिव की मिसाल दी। अब मैं एक बात सोचता हूँ भाई, वो ये कि नाउज़ बिल्लाह ताला मैंने यहाँ पर किसी की बेइज्जती कर दी, ये मैंने काम अंजाम दिया, इसका एक दुनियावी असर है। दुनियावी असर क्या है? शायद वो शख्स मुझसे दुश्मनी करेगा, शायद उस शख्स मेरे सामने गुस्सा करेगा, शायद उस शख्स को मेरी इस बेइज्जती करने की वजह से मुश्किलात उठानी पड़ जाएंगी, ये सब। अच्छा, ये जो अमल है इसका बरज़ख पे कोई असर है क्या? बरज़ख हमारे अमल की तो इजाद है, वो असर क्या है? बाद में आएगा या अभी भी है? थोड़ी देर पहले साबित किया कि अभी भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारी तमाम पैरेलल वर्ल्ड्स में, तमाम पैरेलल दुनियाओं में एक साथ अपना अमल कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं ज़िक्र सईदुश्शहदा की खातिर, दीन के नाम पर किसी की उस दुनिया की ज़िंदगी में उसका साथ देने के लिए इसाले सवाब की मजलिस की। हदफ यही है ना कि कुछ लोग दुनिया से चले गए हैं, उन तक सवाब नहीं पहुंच सकता, आप पहुंचाएं तो पहुंचेगा। तो आप सैयदुश्शहदा के नाम पर मजलिस अज़ा के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, दीन भी सीखेंगे, आपको भी सवाब मिलेगा और उनको भी सवाब मिलेगा। सही, ये जो आप यहाँ तशरीफ़ फरमाएं इससे आपकी सिर्फ दुनिया पे असर पड़ेगा या बरज़ख पे भी असर पड़ेगा? बरज़ख पे वो असर क्या है? वो असर क्या है? काश हम लोग ये समझ जाते। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ बरज़ख का तذکرہ किया, महशर का तذکرہ नहीं किया, वो भी साथ साथ। जन्नत और जहन्नम के बारे में क्या कहेंगे? वो भी साथ साथ। ये सब दुनियाएं साथ साथ चल रही हैं, हम तो साथ साथ चल रहे हैं। निशानी क्या है? रिवायतों ने इसके बारे में क्या कहा है? एक अजीब रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ सिरात के बारे में। सिरात समझ लीजिए तीसरा मरहला हो गया, ये दुनिया की ज़िंदगी, फिर बरज़ख़, फिर महशर, फिर सिरात। सिरात के बारे में एक अजीब रिवायत अर्ज़ करता हूँ, दुरूद भेजिएगा मुहम्मद। एक लतीफ़ा मानंद बयान करते हैं, कहते हैं कभी शादी से मंसूब करते हैं, कभी किसी और से मंसूब करते हैं। कहते हैं कि भाई उसकी माँ ने कहा कि जाओ आग लेकर आओ, चूल्हा जलाना है। उसने कहा कि मैं कहाँ से आग लाऊँ? माँ परेशान हो गई, उसने कहा कि जहन्नम से लाओ, जहाँ से भी लाना है लाओ, जहन्नम से लाओ। तो कहते हैं कि उसने पलट कर कहा शादी है कोई और? उसने कहा कि जहन्नम में आग नहीं है, लोग यहाँ से ले कर जाते, लोग यहाँ से ले कर जाते। सही। अच्छा, मैं इस जुमले को रिवायत की वजह से सीरियस ले रहा हूँ। रिवायत ने क्या कहा? रिवायत ने एक खूबसूरत सवाल उठाया और वो ये कि जिस पुल सरात पे से हर बशर ने गुजरना है और उस पुल सरात के नीचे आ गए, अगर हर बशर ने गुजरना है और उसके नीचे आ गए तो अंबिया ने गुजरना है या नहीं गुजरना है? पूछने वाले ने पूछा रिवायत में कि आया पुले सरात पे से सब ने गुजरना है? फरमाया सब ने गुजरना है। कहा अंबिया ने भी गुजरना है? अंबिया ने भी गुजरना है। उसके नीचे आग है? फरमाया आग है। तो उसने कहा कि वो जो अंबिया जिस सरात पे से गुजरेंगे उसका क्या होगा? तो अजीब जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया ये जो आग है ये शहवतों की आग है जो अंबिया ने दुनिया में ठंडी कर ली है। शहवतों की आग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐजान मुहतरम ये है कि मैं पूरे सरात पे से गुजरते हुए किसी टाइम पर आग का एक अजीब शोला एहसास करूं और परेशान हो जाऊं कि आग का ये शोला कहां से आया, तो मुझे बताया जाएगा कि तुमने जिंदगी में जब 50 साल के हुए थे तो एक दिन इतना तुमने सख्त गुस्सा किया था, ये उसकी आग है। हमारा एक एक अमल सारी दुनियाओं पर असर डाल रहा है, न सिर्फ इस दुनिया के ऊपर, अच्छा भी और बुरा। आप यहाँ तशरीफ फरमाएं ना, ये जो आप अच्छा अमल अंजाम दे रहे हैं सिर्फ इस दुनिया पर असर नहीं डाल रहा, इसके पैरेलल बरज़ख में, महशर में, सरात पर, जहन्नम, जन्नत, हर तरफ इसका असर पड़ रहा है, हर तरफ इसका असर पड़ रहा है। अब सिर्फ ये देखते रहिए कि मैं और आप सुबह से शाम तक जो कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि हम मरेंगे तो बरज़ख बनेगी, नहीं बनी, बननी बाद में होती तो दिखाई कहाँ से। ये जो दिखाई, अभी मैं एक और जुमला अर्ज़ कर दूँ आपकी खिदमत में, जो देखने वाले में ताकत नहीं थी तो इमाम ने सिर्फ बरज़ख दिखाई, वरना आखिर तक सब दिखा देते, सब दिखा देते। देखने वाले में बरज़ख से ज़्यादा देखने की ताकत नहीं थी, ज़्यादा से बरज़ख दिखाई, या कहिए कि उसके जहन में इससे बढ़कर सवाल ही नहीं था, तो बस इतनी ही दिखाई। और नहीं, सब साथ चल रहा है। अब आप और मैं सिर्फ ये जान लें कि हमारे काम का असर क्या है, तो आपको और मुझे ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले एक चैप्टर पे मेहनत कर लो, कौन सा अमल दुनिया में, बरज़ख में, महशर में, पुल पर, आखरत, कौन सा अमल क्या असर देता है, इसको स्टडी करो। इससे क्या फ़ायदा होगा? अमल करने के लिए इंसान के अंदर इरादा मजबूत हो जाएगा, और बुराई छोड़ने के लिए इंसान के अंदर इरादा थोड़ा मजबूत हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई इस काम को मुसलसल करे तो क्या होगा? खुदा नुसरत करेगा या नहीं करेगा? रुकू करेगा। खुदा कैसे नुसरत करेगा? अगर कोई ये काम शुरू कर दे और वो ये देखना शुरू कर दे कि भाई मैं जो अमल अंजाम दे रहा हूँ इसका दुनिया पे असर क्या होगा, बरज़ख पे असर क्या होगा, महशर में असर, तो खुदा क्या करेगा? खुदा नुसरत करेगा। क्या नुसरत करेगा? वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम यकीनन 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 उनकी हिदायत करते हैं। क्या हिदायत करेगा? वो ये हिदायत करेगा कि आपको कभी इशारों में, कभी किनायों में, कभी वजू और कभी खिफा में आपको वो सब दिखाना शुरू कर दे, वो सब दिखाना शुरू कर दे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ आप पढ़ रहे होंगे, कुछ आप देख रहे होंगे, फिर आपके लिए अमल की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें स्टार्टिंग पॉइंट सख्त है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इसके ऊपर अहमियत देना, इस पर अहमियत। रुकावट कहाँ पर है? हकीकत ये कोई रुकावट नहीं, हकीकत ये है कि कोई रुकावट नहीं है। हमने ये जो सितम किया अपने ऊपर, मुझे कि अपने वसाइल को सही इस्तेमाल नहीं किया। मसलन वसाइल से हमारा मतलब क्या है? यही सबसे बड़ा वसीला जो खुदा ने हमें दिया, अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम का वसीला, दुरूद पे वसीले को इस्तेमाल करते हैं। मसलन हमने इस वसीले को जिस जगह पे इस्तेमाल किया वो ये था कि हम बीमार हों और जिस्म शिफा पा जाए। जरा सा तसव्वुर फरमाइएगा कि मैं बीमार हूं और मैं गया शिफा लेने के लिए, और कहीं जिससे शिफा की दरख्वास्त की उस मरकज से आवाज़ आए कि या जिस्म की शफा ले लो या रूह की शफा ले लो। लोग कौन सी की ले? लोग कौन सी की लें? मसलन फर्ज फरमाइए मैं बड़ा सा घर बनवाने गया और जहां गया वहां से आवाज आई कि या बड़ा सा घर ले लो या दिल की नूरानियत ले लो, और लेने वाले के पास चॉइस हो कि जो चाहे वो ले ले, तो वो क्या लेगा? एक वो है जो होना चाहिए, एक वो है जो हो रहा है। जो हो रहा है वो नहीं है जो होना चाहिए। बस किस्मत ही आओ, उनका दर बहुत वसी है, लेने वालों की कैपेसिटी का इशू। जिसका हमने इरादा किया है उसका इशू। तो अगर मैं और आप एक मुश्किल में फंसे हैं और उस मुश्किल में फंसते हुए हमें पता हो, और काश के पता हो कि मुश्किल में फंसने से नूरानियत कैसे मिलेगी, तब उस मुश्किल को दूर करने की दुआ करूं या मुश्किल पे इस्तेकामत की दुआ करूं। मैं आपसे पूछूंगा, हम लोग मुश्किलात के दूर होने की दुआ करते हैं या मुश्किलात में इस्तेकामत की दुआ करते हैं? दूर होने की करते हैं। क्या हमें नहीं मालूम था कि मुश्किलात का दुनिया में होना आखिरत में कितने मकामात दिलाता है? तो दूर होने की दुआ क्यों करते हैं, इस्तेकामत की दुआ क्यों नहीं करते? हमेशा कुरान करीम में जो आयात आती रही इस मामले में वो कहती रही, वअन लैस लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को बस उतना मिलेगा जितने की वो कोशिश करे। अगर काश ऐसा होता कि हम लोग सारी पैरेलल वर्ड्स को बनाने की कोशिश करते और ये मांग रहे होते तो खुदा यही दे रहा होता। लेकिन अगर हमने सिर्फ ये दुनिया मांगी, अब मुश्किल है यहां पर मुझे कि हम ये समझ रहे हैं कि अभी तो इस दुनिया को निपटा लो, बाद वाली बाद में आएगी। नहीं, बाद वाली बाद में नहीं आएगी, नहीं, जारी वो सारी है, और इसी दुनिया में रहते हुए उसको हल करना, वो बाद में नहीं आएगी, वो सब साथ चल रहा है। अच्छा, आप कहेंगे फिर मौत और मौत के बाद फर्क क्या पड़ता है? सिर्फ एक फर्क है, मौत के बाद वो फेज नजर आने लगता है जिसमें अब आपकी आंखें मिली हैं। इस दुनिया में आंखें मिली हैं इस दुनिया की मुनासबत से, जो सिर्फ ये देखते हैं। जैसे ही मरते हैं एक और आंखें मिलती हैं, वो उस दुनिया की मुनासबत से, फिर नॉर्मल आदमी उस दुनिया को देखने लगता है, उससे अगले वाली को वो नहीं देखता सिवाय ये कि कैपेबल हो। अगर कैपेबल हुआ तो बरज़ख में रहते हुए आखिरत को भी देखेगा, और कैपेबल हुआ तो यहाँ रहते हुए भी बरज़ख को देखेगा। इसको किसी तरीके से मेहनत करके हम समझने की कोशिश करें। तजस्सुम आमाल को हम सब मानते हैं, सिर्फ सात दुनियाओं के होने को ये नई बात है जो हम नहीं समझ पा रहे। और उसके बाद अगला मरहला ये होगा कि अगर दुनियाएं साथ हैं तो इन सबका असर क्या है? सबका मतलब, अगर मैं एक नमाज पढ़ूं अच्छी नमाज वक्त के ऊपर तवज्जो से, दुनिया और बरज़ख और महशर और सिरात और आखरत सब पे इसका असर क्या है? किसी का पूरे सिरात आसान क्यों है? किसी का पुल सरात सख्त क्यों है? किसी की मौत आसान क्यों है? किसी की मौत सख्त क्यों है? इन सब चीज़ों को हमें समझता हूँ, और हम ये समझते चले जाएँ तो अमल के लिए इंस्पिरेशन बढ़ती चली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रिवायात में मौजूद है, सब कुछ रिवायात में मौजूद। सिर्फ इतना कर लीजिए कि जिन उलमा ने उन रिवायात को एक जगह जमा किया है, जैसे मसलन आयतुल्ला शहीद दस्तगैर, मसलन बरज़ख किताब में बरज़ख के बारे में जो रिवायात थी उन्हें जमा कर लिया, मुताला करें। जैसे आपके पास उर्दू में तर्जुमा मौजूद है मीज़ानुल हिकमा नाम करके किताब का, क्लासिफाइड रिवायतें हैं हर टॉपिक सब्जेक्ट के ऊपर, उसे मुताला कर लिया, तो एक पिक्चर हमारे और आपके जहन में बनना शुरू हो जाएगी। जो लोग थोड़ा सा अमीर मुताला करना चाहते हैं, आयतुल्ला खुमैनी की जो माद किताब है उसको देखें, जिसमें उन्होंने इन तमाम चीज़ों को मरहला ब मरहला बयान किया हुआ, और फिर देखते चल जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद तआला ने हमें वसीला भी दे दिया है, हमें हुक्म भी दिया कि इस वसीले से मांगो, और उनके दर में कोई कमी नहीं, उन हर मांगने वाले को नवाज दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चाहत भी है, تعلق بھی ہے، مانگنے کی خواہش بھی ہے، صرف کیا مانگنا ہے اس کو نکھارنے کی دیر ہے، اس کو نکھارنے کی دیر ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ کہ سید الشہداء سے چاہت ہے، اس کی کتنے مظاہر، اس کی کتنی نشانیاں ہمارے پاس ہیں. چاہت کیسے ثابت ہوتی ہے، محبت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ محبت صرف لفظ سے ثابت نہیں ہوتی، محبت دل سے ثابت ہوتی ہے. کیسے دل سے ثابت ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کی خوشی میں خوش ہونے لگتے ہیں اور کسی کے غم میں غمگین ہو جائیں، اس کا مطلب ہے محبت کا کوئی رشتہ بن گیا. انسان جس سے تعلق نہیں رکھتا اس کے غم کو احساس نہیں کرتا، نہ اس کی خوشی کو احساس کرتا، لیکن جس سے کوئی تعلق رکھتا ہے اس کے غم کو بھی سمجھتا ہے، اس کی خوشی کو بھی سمجھتا ہے. لہذا آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ مثلا کوئی ماں جب کہ بے خبر ہوتی ہے اپنے کسی بچے کے آنے والی مصیبت پہ پریشان ہو جاتی ہے، جب کہ بے خبر ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا لیکن پریشان ہو جاتی ہے. کیوں؟ تعلق ہے، تعلق کی وجہ سے دل پر ایک اثر پڑتا ہے. تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی اہل بیت سے تعلق ہے، تو ہم کہیں گے ہاں تعلق ہے. تعلق کی نشانی کیا ہے؟ 1400 سال بعد قوم روتا ہے، قوم روتا ہے، بھائی کل میرے والد کا انتقال ہو آج میں روؤں گا، ایک مہینہ رو لوں گا، دو مہینہ رو لوں گا. 1400 سال کون روتا ہے؟ 1400 سال کون؟ بس یہ اہل بیت ہیں جن کی محبت ہے جو انسانوں کو رلاتی ہے. تعلق ہے ایسا، خدا نے ایسی نورانیت قرار دی سید الشہداء کے وجود مقدس، ایسی معجزاتی شخصیت خلق کر دی، اور وہ معجزاتی شخصیت، وہ نورانیت، وہ تعلق کیوں نہ ہو؟ ہے کوئی دنیا میں جو علی اکبر کو بھیج دیا؟ شاید دنیا میں کسی 18 سال کی وہ قیمت نہ بنی ہو جو علی اکبر نے 18 سال میں بنا. دنیا میں کسی 18 سال میں یہ قیمت نہیں بنائی جو حضرت علی اکبر نے بنائی، اور امام حسین ان علی اکبر کو بھیجنے والے. اب اس حسین کے نام پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئیں نہ آئیں؟ جو مصائب کے جملہ تو انسان بس اتنا ہی کہہ دے، تعلق کو دکھانے کے لیے اب تو اتنا کافی ہے. بس میں آپ سے کہوں، ایک یتیم بچی تو پیاسی ہے، امام حسین سے تعلق اتنا بن گیا، الحمدللہ پروردگار کا لطف. 1400 سال بھی گزر جائے، اس کے بعد بھی جب کبھی کوئی شام غریبہ آتی ہے، اندھیرے میں لوگ بیٹھتے ہیں تو خود بخود کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، اور سید الشہداء کی نظروں میں ایسو بڑا خوبصورت مرثیہ پڑھا گیا. سید الشہداء کے اس مظلومانہ لمحے کا، جب وہ امام حمام ذوالجلاس میں زمین پر، صرف امام کا ذوالجلاس سے زمین پر آنا مظلومیت کو پہنچانے کے لیے بہت بلیغ ہے، لیکن جب اس میں اس منظر کا اضافہ کرو کہ تلہ زینبیہ پر زینب بھی دیکھ رہی، خود امام کی مظلومیت وہ، بی بی کی مظلومیت دو، اور تیسرا مظلومیت کا وہ پہلو
کہ آخری جملہ بس یہ عرض کروں کہ امام ایک موقع پر کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے اور لعینوں سے کہا کہ میں زندہ ہوں، میرے خیمے پہ حملہ مت
کرو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کا، اس قلیب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں، ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے اور تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، ان کی شفاعت سے ہم سب کو سرفراز فرما، پرچم قرآن و اہل بیت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے، خدایا ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، یمن کے مظلوم مسلمان دنیا بھر کے اندر مظلوم تیری حجت کے منتظر ہیں، خدایا ان مظلوموں کو امن و امان نصیب فرما۔ آل سعود جیسے ظالموں کو، صفاقوں کو واصل جہنم فرما، جو ظلم انہوں نے اہل بیت اطہار کے مزارات مقدسہ پر کیا، اس کے نتیجے میں ان کی نسلوں کو برباد فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ اہل بیت کی مظلومیت کا، مزارات سے جنت البقیع کو تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ سید السردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانے ساروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاہ محمد وآله الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص، اپنے اور ہمارے مرحومین بالاخص مرحومین مورد نظر علماء عرفاء فقہاء شہداء سب کے لیے تلاوت فرمائیے۔ اس مسجد کے بانی شہید رضی صاحب اور ان کے صاحبزادے کے لیے ضرور شامل فرمائیے۔